ओम शांति। बहुत सुंदर ये पल है क्योंकि हमारी दादियां यज्ञ की आदि रतन, जिन्होंने 1936 से ब्रह्मा बाबा के साथ अपना तन मन धन श्वास सब सफल किया, ऐसी दादियों को हम स्मृति में ला रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम उनका आवाहन भी कर रहे हैं ना। तो ऐसी दादी चंद्रमणि और ऐसी दादी मनोहर इंद्रा, हम सब उनके स्मरण को और ऐसी महान आत्माएं जो उनके अंग संग का अनुभव जिन्होंने किया है, तो ऐसे सुभाष भाई जी का हम सभी एक हाथ से वेलकम करेंगे, क्योंकि सुभाष भाई जी बहुत भाग्यवान है क्योंकि उनको हर दादी के साथ बहुत क्लोज रहने का, साथ में एक सेवा करने का उन्हें ये सुअवसर मिला। मैं सुभाष भाई जी का थोड़ा सा परिचय ऐसे दूंगा कि एक 15-16 साल का कुमार है ना, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्म लेता, और उस उम्र में ज्ञान की समझ क्या होती, रियल में वो आत्मा पूर्व की आत्मा ही होती जो यज्ञ से होकर जाती है, और उसे वो संस्कार, उसके जो पूर्व के संस्कार, पूर्व की स्मृतियां वो जागृत होती, और वो बाबा के पास आके उन्हीं संस्कारों के अनुरूप है ना, बहनों से जुड़ते, ज्ञान से जुड़ते। तो 15-16 साल की उम्र से कैसे अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ से, अपनी दृढ़ता से, निश्चय से इतना लंबा सफर क्रॉस करते हुए आज वो सुभाष भाई के रूप में हमारे सामने बैठे हैं, है ना। तो एक पुरुषार्थ क्या करा सकता है ना, एक निश्चय और बाबा का हाथ और साथ। तो सुभाष भाई तो 16 साल की उम्र में ही बाबा के बने, और छोटी उम्र में ही एक बार उनका आना जो हुआ, वो छोटी उम्र होने के कारण उनको यहाँ से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी बहनों से भी, वहां तो माताओं का ग्रुप था, तो माताओं के ग्रुप में उनकी कुछ पानी पिलाना आदि की सेवा के हिसाब से पांडव वन आने का मौका मिल गया उन्हें। और आते ही उनकी ये इच्छा थी कि मैं समर्पित हो जाऊं, लेकिन दादियों ने उन्हें कई बार वापस भी भेजा, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन ये 35 साल पांडव भवन से लेकर ज्ञान सरोवर तक का सफर, ये बहुत बहुत अनुभवों से भरा हुआ है उनके। और हम यहां भी देखते हैं जो भाई साहब को हम डाइनिंग की सेवा में देखते हैं, अभी जो आप देखते हैं चाय पीते हैं आप सभी, जो एरोड्रम एयरपोर्ट लगता है ना, वो ये सब इनकी ही वो क्रिएशन है। मैं कई बार सोचता हूँ आप कितना सोच लेते हो, नीचे के 3-4 डाइनिंग, बीच का डाइनिंग, ऊपर के डाइनिंग, और उस समय तो जब सेवाएं होती थी, विंग्स के प्रोग्राम होते थे, 600-700 लोगों की पार्टी होती थी, गेस्ट होते थे, सारे वीआईपी होते थे, नीचे का 5 नंबर वीआईपी डाइनिंग, जनरल डाइनिंग, भोजन खत्म होता तो कैसे 2 बजे 2:30 बजे भी जाके भोजन बनवाना दोपहर में। अच्छा, साफ सफाई के लिए माइयों को डायरेक्शन देना, हम देखते थे इनकी पूरी जो सेवाएं हैं। और एक नवीनता, कुछ न कुछ कैसे मैं डाइनिंग में क्या ऐड करूं, है ना। तो अभी आप एक बार डाइनिंग भी देखने जाइएगा, 5 नंबर डाइनिंग कैसा बना है, और ऊपर का भी अभी डाइनिंग तैयार हो रहा है। तो ये जो हर तरफ ध्यान यज्ञ की चीज है, कोई व्यर्थ न जाए। मुझे एक इनका स्लोगन हमेशा रहता है, कोई भी बात होती कहते सिस्टम के अनुसार चलो, सिस्टम से अलग नहीं, जो सिस्टम बनाया हुआ है दादियों के द्वारा, सबके द्वारा, उसके अनुसार चलना है। तो बहुत कुछ, एक बड़े भाई की तरह वो हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये अनुभव की जो खान है, हम सभी ये थोड़ा सा समय में का 1 घंटे तो कुछ भी नहीं आपके लिए, क्योंकि आपने तो इतना कुछ पाया है। तो हम सभी इनके ये 35 साल के पूरे समर्पित जीवन के अनुभव की हम पूरा सार हम अपने जीवन में लेंगे, ठीक है ना। सुभाष भाई जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो ज्ञान सरोवर की प्रथम डायरेक्टर दादी चंद्रमणि, आपकी नजर में आप थोड़ा उनके व्यक्तित्व को क्या देखा आपने, और दादी ने उन्हें भेजा तो उन एक दादी जी के व्यक्तित्व में, दादी चंद्रमणि के व्यक्तित्व में आपने क्या खूबियां वो पाई और देखी, और खुद आपने सीखी अपने जीवन में।
ओम शांति गोयन भाई, आपने तो बहुत लंबा लंबा परिचय दिया, जितना नहीं हम वैसे देखा जाए तो समय का बहुत महत्व होता है, और जब हम समय पे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं तो उसका भविष्य में देखते कितना फायदा होता है। मैंने अपने जीवन में 1983 में सोचा यहाँ आने के बाद कि मुझे क्या करना है, और 1986 में डिसीजन ले लिया कि मुझे समर्पित होना है, और मैं हो गया। प्रकाशमणि दादी जी की एक विशेष कृपा रही। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जिस ज्ञान सरोवर में हम बैठे हैं, इतना सुंदर, इतना बढ़िया, तो ये पहले जंगल था, और जब जंगल था तब हम आते थे, इतना मिट्टी ये होता था। और जब मुझे प्रकाशमणि दादी जी ने कहा कि आपको ज्ञान सरोवर जाना है, तो मेरी तो जैसे ना नीचे से जमीन खिसक गई कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, क्योंकि पांडव भवन में जो है सारी दादियां, चार धाम की यात्रा, बाबा की पहाड़ी, ये सब मेरे सामने नजर आने लगा कि मैं इसका सब का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन जब प्रकाशमणि दादी हम जैसे या ज्ञान सरोवर से ही जा रहे थे, तो आंगन में प्रकाशमणि दादी जी बैठे थे और मैं और सूरज भाई थे। सूरज भाई को दादी जी ने बोला, सूर्य इधर आओ, तो गए। अभी मैं भी पीछे पीछे, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना है, दादी को सूक्ष्म रूप में थोड़ा चिंता हो रही है कि इसको कौन संभालेगा, कौन ऐसे। तो सूरज भाई ने तो सहज बाबा बैठा है ना ऐसे बोल दिया। तो दादी जी ने तुरंत कहा, तुम जाओगे ऐसे करके। तो सूरज भाई ने, हाँ दादी क्यों नहीं, और मैं हम पीछे खड़े थे तो इसको भी ले जाना साथ में बोल दिया। बस अब दादी जी को तो मैं मना नहीं कर सकता, जी दादी, और बस वहां से वो ठप्पा लग गया। हम आ गए इधर, और दूसरा दादी के बहुत बड़ा ये संकल्प था कि इतना बड़ा भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, कौन मतलब यहाँ देखभाल करने वाला कौन, बड़ा कौन। तो उस समय चंद्रमणि दादी जी पंजाब में, काफी पूरा पंजाब संभालते थे, और चंद्रमणि दादी जी के अंदर विशेषता थी, दादी जी बोल दिया माना जी दादी, हाँ दादी, जी दादी। बस दादी जी पंजाब से आई और उद्घाटन आदि के, और बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी ने कहा कि दादी आपको ज्ञान सरोवर जाना है, जी दादी, बस आ गए। फिर तो यहां दादी जी ने ऐसी रौनक लाई, मेरे ज्ञान सरोवर के कुमार, मेरे ज्ञान सरोवर के कुमार, इसके नीचे तो आते ही नहीं थे, एकदम समर्पण, एकदम संपन्न कुमार, इस भाषा में दादी हम लोगों को इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह, क्योंकि दादी को भी पता था कि ये दूर दूर से आए हैं सारे, और इतने सारे कुमार, समझो 150 कुमार यहां, अभी
छोटी उम्र की,
छोटी उम्र, और ये भी नहीं कि कोई संपन्न है, कोई आपस में झगड़ा बगड़ा भी तो होता ही रहता था ना हम लोग का आपस में। तो जाते थे दादी जी के पास, दादी जी ने इसने मुझे ये बोला, दादी जी ने मुझे ये बोला, ऐसे उन दादी जी के पास जाके बोलते थे, तो दादी जी दोनों की बातें सुनती थी, एक को कभी नहीं बुलाती थी, अच्छा उसे, हाँ उसको लेके आओ, वो दोनों जाते थे, फिर अपने अपने बात सुनाते थे, तो अरे वाह वाह क्या बात है, ऐसे करके जोर से एकदम, जैसे नहीं शेरनी होती ऐसे, और फिर बोलते अच्छा मैंने बहुत अच्छी आप दोनों की बात सुनी, हम किस लिए आए इधर, तो सेवा करने के लिए आए, अच्छा तो ठीक है। फिर दादी क्या करती थी, दोनों को दो पीस देती थी,
टोली
देती थी, बोलती अच्छा तुम इसको खिलाओ और तुम इसको खिलाओ, बस। फिर पहला काम ये करती थी, फिर इससे भी दादी का दिल नहीं भरता था, नहीं अभी खड़े हो जाओ, खड़े होते अब दोनों को भाके पहनो, फिर आपस में गले मिलते थे और दोनों खुश होते बाहर आ जाते थे। तो देखो दादी जी कितना मतलब सहज भाव से, न तो आप आजकल का उसकी बात सुनो उसके बाद तो इसी में ही टाइम निकल जाता है। और मुझे याद है जब भी दादी पांडव भवन में बाबा को मिलती थी अविक्त बाबा से, तो वाला अच्छा ये पंजाब की शेरनी आई है, पंजाब की शेरनी। तो दादी जी का आवाज वो भी बुलंद होता था एकदम। और आपको पता है यज्ञ में सबसे ज्यादा मददगार जो परिवार बना है चंद्रमणि दादी जी का परिवार। उनकी एक बहन है वो बेंगलोर जोन की मतलब कर्नाटक जोन की इंचार्ज हृदय पुष्पा, जिसको टिकम दादी भी बोलते थे। फिर उनकी छोटी बहन है चंद्रू करके, उनका जो बेटा है उन्होंने हॉस्पिटल में जो सेकंड फेज का पूरा सेवा उन्होंने की। उनकी बेटी शायद ज्योति बहन है, वो भी लंदन में है, बहुत बड़ी सेवा करते। तो पूरा खानदान जो है ना शुरू से ही, उनके जो पिताजी थे उनका भी बहुत बड़ी कहानी है। तो कैसे खानदान पूरा जुड़ गया और यज्ञ में पूरा भारत में कहीं भी कुछ भी ऐसी कुछ बात होती थी तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, चंद्रमन दादी को भेजते थे। कितना उनके ऊपर विश्वास था। और मुझे याद है जब कोई हापुड़ का हंगामा हुआ वहां बहुत सारी बातें हुई, तो दादी को मतलब ऐसी कोई भी बात होती तो उसको दादी पूरा निपटारा करके फिर बाबा के पास आती। जैसे पंजाब में आतंकवाद का बहुत बड़ा हुआ था उस समय भी दादी वहां ही थी। तो इस प्रकार से कोई भी मतलब धाकड़ काम होता था ना वो बाबा दादी से कराते थे। और आपको पता होगा हिस्ट्री के जो किताब इसमें भी है कि दादी टीचर रही है, जो हमारा बोर्डिंग स्कूल था ना शुरू में, तो चंद्रमन दादी टीचर मतलब वो दो चार बहनें थे, जय प्रकाशमणि दादी है हमारी, चंद्रमन दादी जी ये टीचर रहते थे और वो सिखाते थे बच्चों को। तो इस प्रकार हमारी जो चंद्रमन दादी जी है, तो जैसे दादी को चिंता लगी कि कैसे, तो दादी जी ने इनका नाम सिलेक्ट किया और हमारे पालना के लिए। देखो हम लोग कैसे इतना सहज तैयार नहीं हुए, हमारे चंद्रमन दादी जैसे एकदम धाकड़ जो टीचर थी उसको भेजा। फिर चंद्रमन दादी की हमारी लास्ट की मुलाकात हुई थी 1907 में। दादी बेंगलोर जा रही थी और बेंगलोर जाने के पहले दादी किचन में आई, ऐसे ही आ गई। तो वो हमारा भंडारा है ना उसके बीच में बैठ, वो दरवाजे में बैठ के सब लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि भोजन बन गया था, 11 का टाइम था। तो सब दादी कुछ सुना रहे थी बातें, अच्छा मैं बेंगलोर जा रही हूँ कल ऐसे ऐसे। तो फिर बोला दादी बोलती नहीं टोली मंगा दो, मुझे टोली खिलानी आप सबको। टोली खिलाई और फिर दादी ने विदाई ली और फिर वहां से फिर वापिस ही नहीं आई। और लेकिन दादी के प्रति उनका इतना प्यार था कि कोई भी बात हो, एक बार मैं पांडव भवन गया था, दादी जी चलो ना ज्ञान स्वरूप, आपने नहीं नहीं मुझे है ना दादी जी ने बुलाया इधर, यहाँ टीचर भट्टी चल रही है ना उनका क्लास कराने के लिए, तो दादी जी जब भी मुझे भेजेंगे ना तभी आऊंगी ज्ञान सरोवर, मतलब ऐसी आज्ञा। और जब शरीर भी छोड़ा था ना तब दादी जी जब वो संदेश आया था ना तो बोलती बड़ी मैं तो बड़ी दादी से छुट्टी नहीं लिया, मैं ऐसी आ गई ऊपर, पता ही नहीं चला कैसे शरीर छूट गया कैसे ऊपर आया, मतलब देखो इतना एकदम इजीली। तो ऐसी हमारी चंद्रमन दादी, उन्होंने हमारी इतनी पालना की है और इसलिए हमारे जो ज्ञान सरोवर के कुमार है आज अभी कितने मजबूती से सारी सेवाएं करते कार्य करते हैं।
जैसे दादी का ये भी देखा जाता था कि दादी हमेशा हर परिस्थिति में एक पॉजिटिव, एक जैसे सकारात्मक ही एक वाइब्रेशन देती थी। जैसे अमृत वेले किसी दिन दादी को लगता आज थोड़ा सा कम है, तो मुरली क्लास में बड़े जोर से वाह मेरे ज्ञान सरोवर के योगी तपस्वी, कोई भी अमृत वेला मिस नहीं करता है, वाह क्या तो योगी है हमारे। तो दादी कभी ये नहीं कहती थी कि आज आप सब कुछ कोई अमृत वेला कम हुआ या कुछ इस तरह की बातें नहीं, हमेशा पॉजिटिव कि वाह मेरे ज्ञान सरोवर निवासी योगी बच्चे बिल्कुल अमृतेला कभी मिस नहीं करते हैं, तो बेचारे जो नहीं आए उनको थोड़ा फील होता था दादी इतनी महिमा कर रही है हमारी, इतनी प्रशंसा कर रही है, तो दूसरे दिन ऑटोमेटिक सब चीजें ठीक हो जाती थी। तो दादियों का जो तरीका होता था हमेशा सकारात्मक चीज देना, और उनमें उदारता जो पालना देने के संस्कार हैं। अभी भी जस्ट एक भाई अपना अनुभव सुना रहे थे कि मैं कारपेंटरी की सेवा में जा रहा था सुबह सुबह, नाश्ता मैं सोचा बाद में करूंगा, तो दादी ने मुझे देखा, ठंड बहुत रही होगी, तो बोले क्यों तुमने कुछ गर्म नहीं पहना है। तो फिर दादी ने तुरंत अपनी जो शॉल, अपनी शॉल उसी समय उतार के उसको ओढ़ाई, और बोले वो भाई बोले मैं आज तक वो शॉल संभाल के रखी है मैंने। तो दादियों की जो पालना का जो तरीका था और जो विशेषताएं देखने का तरीका था वो तो अनमोल था। अब मैं थोड़ा सा मनोहर दादी जी की तरफ, आप मनोहर दादी जी, क्योंकि दादी चंदमणि जी जब अव्यक्त हुए, जब उन्होंने देह के त्याग किया तो अपनी संपूर्णता को पाया उन्होंने, तो दादी मनोहर इंद्रा आए फिर यहाँ एज अ डायरेक्टर। तो आपने दोनों के पालना में और सब चीजों में क्या अंतर देखा, मनोहर दादी जी और दादी चंद्रमणि, मनोहर दादी के लिए थोड़ा सा?
ये जैसे चंद्रमणि दादी समझो मैथमेटिक के टीचर है, और ये जो है सांस्कृतिक के टीचर है हमारी मनोहर दादी। तो मनोहर दादी की विशेषता ये थी, वो बहुत रमणीक।
बाबा उनको आलू भी बोलते थे सब्जी में,
कई भी मिला बाबा उनका ये आलू है, कई भी मिला वो मिक्स हो जाता
है सेवा में।
तो सबसे पहले हमारी मनोहर दादी से मुलाकात है पांडव भवन में। दादी वैसे पंजाब से करनाल से आते थे यहाँ, जब बाबा का सीजन होता था ना वो चलाने के हिसाब से आती थी, फिर उनका क्लास है ऐसी वो कराने। और मधुबन का जो रात्रि क्लास होता था 9 से 10 वो पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ कोई बाहर से कोई आया समाचार सुनाया, फलाने में सेवा की, फलम मेला हो गया, ऐसे सुनाते थे। अब हम लोग क्या करते थे, रोज 8:30 से करीब 9:15 तक भंडारे में सूरज भाई और हम लोग 25-30 लोग इकट्ठा हो जाते भंडारे में, क्योंकि कभी कभी खाना भी खुट जाता तो पूरी भी बना देते थे, वो साथ साथ काम हो जाता था। तो हम लोग वहां बैठ के तीव्र पुरुषार्थ के ऊपर चिंतन करते थे और चार्ट कैसे बढ़ाए। तो क्या हुआ, एक दिन समाचार कोई आया था, समाचार सुनाने का प्रोग्राम था, तो अनाउंसमेंट हुआ तो वो हिस्ट्री हॉल में कोई पहुंचा ही नहीं, एक दो लोग पहुंचे, तो एकदम ये हो गया भाई कहां गए सारे, कहां गए। तो मनोहर दादी ने इंक्वायरी की कहां गए सारे, तो पता चला ये सूरज भाई के साथ वहां बैठते भंडारे में, वैसे चटाई बुटाई बिछा के मस्त मजा आता था। तो फिर दादी जी ने दूसरे दिन प्रोग्राम उस दिन कैंसिल किया, दूसरे दिन बुलाया प्रकाश मणि दादी को, बताया ये सूर्य है ना इन लोगों को नीचे लेके बैठता है उधर ऐसे ऐसे। तो सूरज भाई को प्रकाश मणि दादी जी ने बुलाया, पूछा क्या करते हो, बोला पुरुषार्थ की बातें करते है, चार्ट की बातें करते। तो तुम वहां क्यों करते हो, यहां करो ना, इस हॉल में करो ना, देखो पॉजिटिव कैसे। हमें तो लगा कि अभी डांट पड़ने वाले, तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ हिस्ट्री हॉल में करो, मैं भी आऊंगी। और सचमुच प्रकाश मणि दादी आके पीछे बैठ जाती थी, तो ये वो तब से वो ये क्लास शुरू हो गया। तो मनोहर दादी का मतलब तब से हमारा शुरू हो गया कनेक्शन, फिर धीरे धीरे मिलते रहे, फिर यहां आए। तो यहां मिले तो दादी जी की विशेषता थी कि कोई भी चीज होती थी ना रमणीकता से। और पांडव भवन की भी एक बात मैं सुनाता हूं, जब वो महाभारत और रामायण ये सब चल रहा था तो दादी को ये उसका बहुत इंटरेस्ट रहता था, स्पिरिचुअल भी है और अच्छा है। तो जब प्रकाश मणि दादी विदेश यात्रा जाती थी ना विदेश यात्रा, तो मनोहर दादी के हाथ में सारी पावर आती थी, तो मनोहर दादी फिर फटाफट बेल बजाती जल्दी जल्दी आ जाओ, तो फटाफट लोग 8 बजे 7:30 बजे भोजन पूरा था, 8 बजे खाना खाके मेडिटेशन हॉल में, बोला देखो मनोहर दादी का क्लास कितना फुल है एकदम, कोई भी इधर उधर नहीं। तो मुझे याद है एक बार
उसमें क्या चलता था, मैंने सीरियल
जो महाभारत जो रामायण जो चला तो बहुत फेमस था ना, तो वो दिखाते, तो हम दादी को भी अच्छा लगता था और हम लोगों को भी अच्छा लगता था, तो मतलब हम दो तीन वो देखते थे। तो मुझे याद है मेरा एक दिन ड्यूटी थी आंगन में ड्यूटी थी, पहरे की ड्यूटी, तो मैं गया नहीं था। मन में तो बहुत आ रहा था कि जाए, लेकिन ड्यूटी छोड़ के कैसे जाए। तो वहां निर्वय भाई घूम रहे थे वहां, तो निर्वय बोले, काके तुम नहीं ऊपर गए? नहीं, मेरी ड्यूटी है ना, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी है, अच्छा आज तुम्हारी ड्यूटी मैं करता हूं, जाओ। मैं तो 2 सेकंड में हॉल में पहुंच गया। तो निर्वय भाई हमारी ड्यूटी किया, मतलब देखो कितना, मतलब ये था, बड़ों का भी इतना प्यार होता कि ये छोटा बच्चा है, यहाँ वो दिल तो कर रहा है लेकिन यहाँ बैठा है। तो इस प्रकार से फिर जैसे हम यहाँ आए तो दादी के साथ कनेक्शन हमारा होता था कि कहीं पिकनिक है, कहीं कुछ है, तो दादी प्रोग्राम देती थी, अच्छा फलाने जगह जाना है, ये जंगल में जाना है, वहां पीस पार्क में जाना है, तो इस प्रकार से। लेकिन दादी जी को है ना मीठा बहुत पसंद होता, दादी वैसे शुगर पेशेंट थी, मीठा पसंद। तो एक बार वो हंसी की बात सुनाता हूँ, कुछ बहने कॉटेज में गई तो मनोहर दादी ने कहा भाग सबको आइसक्रीम खिलाओ, तो सभी को आइसक्रीम, तो भाग मैंने कहा दादी आपके लिए फीका रखा हुआ है, तो फीका रखा था, तो किसी ने हाँ वो कटोरे में फीका रखा ना वो ले लेना, तो दादी को दे दिया एक बहन ने फीका वाला, तो दादी खावे मुंह के अंदर ही नहीं जावे, दादी बोलती भाग ये देखो ना आइसक्रीम कैसे है, थोड़ा आप भी टेस्ट करो, क्योंकि वो जम गया था ना, तो बोले जैसे भाग मैंने टेस्ट, अरे दादी ये तो दोसे का आटा है।
ओह माय गॉड।
तो क्योंकि दोसे का आटा भी बचा होगा तो वो कटोरी में रखा था और ये आइसक्रीम भी उधर ही रखा, तो दोसे का, दादी ये तो। और इस प्रकार में दादी मतलब कितना, मतलब नॉर्मल कोई भी बात को कैसे भी। और जब दादी जी हमारे यहाँ भट्टिया शुरू हो गई पांडव भवन में, तो दादी को ऐसा लगता था अरे इतनी सारी टीचर आए क्या करे क्या करे। तो वे दादी क्या करती थी, एक दिन उनको यहाँ बुलाती थी, और हमारा जो ऊपर जो डाइनिंग नंबर 7 का जो टेरेस है वहां सबको कटा करके वहां योग भी कराती थी, फिर आइसक्रीम खिलाती थी और फिर गरबा भी कराती थी। तो दादी को ऐसी चीजें बहुत पसंद आती थी और बहुत अच्छा लगता था। और दादी के अंदर एक, जो आपको पता होगा कि जो हमारी योग शिविर की जो टीचर है, पहली टीचर वो मनोहर दादी जी, जो मधुबन में जो योग शिविर शुरू हुए, तो पूरा जो समाचार, फिर लेन देन, फिर बड़ी दादी को सुनाना, ऐसे अभी तो देखो बुलाते तो कितने लोग आते हैं। हमें याद है एक बार वो इंग्लिश योग शिविर था, इंग्लिश, और उसमें केवल एक बंदा आया था योग शिविर करने के लिए, एक, और कभी 10 कभी 25 माना बहुत बड़ा ग्रुप आया, 25 माना बहुत बड़ा ग्रुप आता। मतलब इस प्रकार से सेवा शुरू होते होते तो कोई यहां आए, और जब यहां शुरुआत हुई तो आपको पता है 95 में पहली जो उद्घाटन हुआ, और 13 कॉन्फ्रेंस हुई, 13। हम लोगों को कुछ अनुभव नहीं था और दादियों को भी इतने अनुभव नहीं थे, क्योंकि क्या होता था आज आया 3 दिन रहा, चौथे दिन गया, पांचवे दिन तो दूसरे लोग आ गए, मतलब गए नहीं उसके पहले दूसरे आ जाते थे, उनको साफ ये वो। तो ज्ञान सरोवर निवासी इतने मतलब मेहनत कर रहे थे, कर इतना उमंग उत्साह था, और हर ग्रुप में कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है, कोई गवर्नर आ रहा है, और दादियां पहले हमारे पास आती थी वहां भोजन करने के लिए वहां। तो दादी के अंदर एक विशेषता थी कि दादी चुटकुले भी बहुत अच्छा सुनाती थी, कुछ गेम्स भी कराती थी। जैसे आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाते, आप अपने आप ही जज करना क्या करना। तो और ये चुटकुला ब्रह्मा बाबा को भी दादी सुनाती थी, ब्रह्मा बाबा को। अभी आप, मैं आपको सुनाता हूं तो आप अपने को जज करना और आंसर देना, ठीक है? तैयार है सब? हाँ। गुंगा पानी कैसे मांगेगा? हाँ?
कैसे? आप भी बता रहे हो,
कैसे मांगेगा? हाँ? और अंधा कैची कैसे मांगेगा? हाँ? कैसे? अंधा तो बोल सकता है ना। तो क्या होता, बाबा को बताया मनोहर दादी ने कि एक्शन किया ना, जैसे मैंने किया, बाबा गुंगा पानी तो हाँ बच्ची ऐसा, और आंधा कैची कैसे, हाँ ऐसे, बाबा आंधा तो बोल सकते, अरे मुट्टी तुमने तो मेरे का एक्शन करके दिखा दिया। तो ऐसे बाबा को, और ऐसे जैसे डाइनिंग में हमारे पास वीआईपी आते थे बड़े बड़े कुछ ऐसे, तो दादी बिठाती थी और उसको एक कॉइन होता था, फिर टाइम मिले तो बाद में दिखाएंगे, ऐसी कॉइन चिपकाती थी और होता अच्छा गुस्सा आता है कि देखो आपको ऐसे ऐसे हिला देती, तो सब उसमें लगभग सब फेल हो जाते थे। तो दो मिनट बाबा को याद करके 10:30 का गीत बज रहा है।
जैसे मनोहर दादी आरंभ से ही बाबा उन्हें दादी चंदमणि जी को सारी विशेष सेवाओं के निमित्त जैसे बनाया, तो एक आपकी स्मृति में है शायद कि मनोहर दादी जोधपुर से सेवा करते हुए आ रहे थे, तो वो वाक्य आप सुनाइए सभी को।
शुरू शुरू में क्या था कि सेवाएं बहुत कम होती थी, तो कहीं भी अगर निमंत्रण मिल जाए तो बाबा तुरंत भेजता था। तो एक बार क्या हुआ, ये दोनों की जोड़ी होती थी, हर हर गंगे, मतलब एक गंगे दादी जो कानपुर में लास्ट समय तक सेवाई की, और ये मनोहर दादी जी, दोनों की हर हर गंगे, दोनों की बनती भी थी, मिलती भी थे, बातें भी करते थे। तो एक तो शुरू शुरू की बात है कि जो भी आते थे ना, तो बाबा पूछते थे मधुबन में, अच्छा बच्ची कितने लोग लाए? तो एक बार क्या हुआ, कोई आए नहीं था, एक ही बंदा था, और वो भी ट्रेन में बैठे थे, और ट्रेन में आए और दोनों बैठे, और दादी बैठी थी, तो बोलता दादी मैं आऊं क्या आपके साथ, ऐसे ऐसे करके, अच्छा चलो ठीक है। तो अभी नया था, तो दादी जी ने 2-3 बातें, देखो तो बाबा पूछेगा अच्छा पहले कभी आए थे बच्चे, तो बोलना बाबा पहले आए थे, 5000 साल पहले आए थे, ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक है। तो ये गए फिर स्नान पानी करके, फिर पता चल गया कि मनोहर ने एक कोई लेके आए है बंदा ऐसे, तो बोला ले आओ। तो फिर वो बाबा के सामने लेके गए, शर्म तो दादी को बहुत आ रही थी, देखो ये की आया है मैं बाबा को मिलाने के लिए। तो बाबा ने पूछा, बच्चे पहले कभी मिले थे? हाँ बाबा 5000 साल पहले। अच्छा आपको किसने बताया? आते समय दादी ने बताया। बोला एक भी ऐसे। तो ऐसे ऐसे दादी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, और जब वो दिल्ली से आ रहे थे सेवा करके, फिर जोधपुर में उनको प्रोग्राम मिला कि यहाँ 4-5 दिन वहां सेवा करके फिर आना, तो गंगे दादी और मनोहर दादी दोनों वहां जोधपुर में सेवा किया, बहुत अच्छा ज्ञान बान सुनाया जिन्होंने बुलाया था वहां। अब क्या वो पूरा हो गया, एक हफ्ता पूरा हो गया, और ट्रेन में बैठ गए तो इतने में ना दो बंदे आए, दो भाई, अरे दादी हम कितना ज्ञान के व्याकुल है, हम तो ज्ञान सुना नहीं और आप ऐसे ही जा रहे, हमारा तो कैसे भाग्य बनेगा, ऐसे 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 उनको उलझा दिया, दोनों दादियों को बोला नहीं आप, हम आपको कल भेजेंगे, आप आज हमारे लिए हमारे परिवार के लिए ज्ञान सुनाओ, बाबा का इतना अच्छा ज्ञान है, ऐसे करके। तो दोनों ने आपस में बात किया, बोले चलो ठीक है, चांस मिला, देखो सामने से ऑफर आया है। तो दोनों ट्रेन से उतर गए, ट्रेन से उतर के वो टांगा होता था, वो जमाने टांगे में बैठ के वो भाई लोग लेके जा रहे थे, जा रहे, जोधपुर शहर है उसके बाहर निकल रहे थे। तो दादी को डाउट आया, अरे ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहाँ लेके जा रहे? तो बोला भाई आपका घर कहाँ है? बोला इधर ही है, नजदीक है। फिर एक घर के सामने जाके है ना खड़े, तो दादी दादियों तो परख शक्ति थी ना, डाउट आया कुछ तो गड़बड़ है करके, बोला चुप तुम्हारा परिवार है ना उसको पहले बाहर लेके आओ, कौन है परिवार तुम्हारा। तो एकदम वो सकपका गए क्योंकि उनकी दिमाग कुछ और था। तो वो ये किया कि नहीं नहीं आप उतरो इधर, नहीं नहीं हम नहीं उतरेंगे। तो दादी ने बोला देखो तुम ऐसा करेगा तो हम बहुत आवाज करेंगे इधर। तो वो जैसे ही वो बोला ना कि हम चिल्लाएंगे आवाज करेंगे, तो उन्होंने ना पिस्तौल निकाला, ऐसे दादी के ऊपर ऐसे पिस्तौल निकाला। तो दादियां ये पिस्तौल पिस्तौल से हम नहीं डरते हैं, हमारे साथ स्वयं भगवान है, और उनके तरफ एकदम पावरफुल दृष्टि देने लगे वो उन लोग के ऊपर। जब उनको जब दृष्टि दिया तो पता नहीं उनके अंदर क्या हो गया, वो क्या उनको बाबा ने क्या दृश्य दिखाया, और एकदम वहां से ऐसे भागे, वहां से दौड़े एकदम वहां से निकल गए। तो बाद में वो टांगे वाले से वापिस करके फिर अपना ट्रेन पकड़ के वापिस आए, फिर बाबा को समाचार सुनाया, बाबा ऐसे ऐसे हो गया। हाँ बहुत लालच करती हो ना तुम, ऐसे करके बाबा ने डांट लगाया, लालच में आ जाती हो। बाबा ने बाबा को पूछा था वैसे ही ऐसे करके, तो मतलब बाबा को बाबा इस प्यार भी करता था और बोलता कि कोई भी बिना प्रोग्राम के ना ऐसे अचानक नहीं जाना चाहिए, बाबा से पूछना चाहिए, बाबा ने आपको भेजा था जिससे वो करना चाहिए। तो ऐसे बाबा शिक्षा सावधानी भी देते थे। और मनोर दादी में ये विशेषता थी, मनोर मने मनोर कथा, मनोर कथा उच्च में बहुत फेमस होता था, मनोर कहानियां करके। तो सब दादी होते अच्छा मनोर कहानी सुना दो कुछ। तो जब भी कोई मुझे क्लास में या कुछ शुरुआत होती
है, यज्ञ हिस्ट्री वही सुनाते थे उस समय।
हाँ
यज्ञ को पूरा
और मनोहर कहानियां सुनाते सुनाते दादी का इतना कि कोई भी अगर कोई भी क्लास हो कॉन्फ्रेंस हो कोई, दादी का एक फिक्स होता था यज्ञ की हिस्ट्री। और यज्ञ की हिस्ट्री इतनी हुबेहुब सुनाती थी हुबे, तो लोग एकदम
फिल्म
हिलते नहीं थे, और दादी और सुनाओ ऐसे करके। तो ये दादी की एक फेमस था कि यज्ञ की हिस्ट्री, कैसे बाबा आए, कैसे कहाँ हुआ, कहाँ से फिर इधर कैसे आए यहाँ, और एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनाती थी। और इतना तीन दिन जो ज्ञान सुनाते थे वो सब भूल जाते, और ये सब बाबा की बातें इतनी जो हिस्ट्री है वो सारा हमारे अंदर लेके जाते थे, और फिर लिटरेचर में जाके वो किताब लेते थे पढ़ते थे, और उसी से कई बाबा के बच्चे बन गए हैं। तो ये मनोहर दादी की विशेषता थी। और मनोहर दादी के अंदर है ना बहुत रमणीकता भी थी, और टाइम की बहुत पंक्चुअली थी, ऐसे नहीं कि लंबा लंबा 8 बजे 9 बजे ऐसे नहीं। अगर उनको बोला ना कि भाई आपका 7:45 बजे पूरा करना है, वैसे 7 से 8 मुरली होती थी ना, तो दादी 7:45 बजे ही पूरी करती थी, और सभी को चांस देती थी। उन्होंने क्या शुरुआत किया, गीत, मुरली के पहले गीत, तो सब लोग मतलब गीत गाने वाले बन गए, गोविंद भाई भी उसी में से निकला है गीत गाने। तो कोई ना कोई मुरली का गीत तैयार करते थे, और कौन गीत गाएगा, एकदम तुरंत आते थे मुरली के पहले गीत गाते थे। तो एक रौनक आ जाती थी मुरली के पहले ही, एक मनोरंजन जैसा एक माहौल बन जाता था। और फिर भी दादी है ना बराबर 7:45 बजे मुरली पूरी करती थी। हमारे कल एक भाई थे सुरेश भाई ने सुनाया, दादी जब वहां बेंगलोर के तरफ सेवा साउथ इंडिया सेवा करने के लिए गई, तो प्रोग्राम पूरा हो गया तो बोलते ना भाई दादी के लिए कार आ रही कार आ रही, तो एक जीप थी उसमें 10-12 लोग बैठे थे, तो एक सीट खाली थी। तो दादी बोलती अरे को छोड़ो कार क्या है, मैं इसी में बैठती हूँ चलो। तो वो दादी वो जीप में बैठ के मतलब इतना साधारण था, उसको VIP ये वो ऐसा कुछ नहीं होता था, सिंपल सिटी नॉर्मल, कोई इसका ये नहीं होता था। और खाने पीने भी इसमें भी बहुत मतलब जो है जैसा है फटाफट, और उसकी महिमा जरूर करती थी जो भी ब्रह्मा भोजन होता है, बहुत अच्छा बनाया बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से दादी के अंदर निर्माणता भी थी, सिंपल सिटी भी थी, और सबके साथ जैसे ना गोविंद बहन बोला था कि आलू कि जो भी वीआईपी आए तो वीआईपी जैसे, बीके आए तो बीके जैसे, माताओं आए तो माताओं जैसे, वीआईपी कोई बड़ा वीआईपी है उसके जैसे। और जब दादियां बैठती थी तो आपस में इतने मतलब वो जैसे ना सहेलियां होती है, एकदम कुछ ना कुछ चुटकुले ये वो सुनाना और एकदम एंजॉय करते थे। लेकिन मैंने देखा दादी जब लास्ट लास्ट में जब मुरली सुनाती थी, मुरली पूरी होती थी और सबको बोलती आप चले जाओ, और दादी आराम से मतलब जैसे ना दादी को जैसे वैराग वृत्ति हो गई थी एकदम, अभी इस दुनिया में कुछ नहीं, तो हम लोग मुरली सुन के सब चले जाते थे और दादी अकेली करीब 15 मिनट योग में बैठ जाती थी उसी मतलब इसी संदल पे यहीं कहीं ही 15 मिनट एकदम बंद करके। तो दादी बोले चलो ना दादी, फिर दादी इसके बाद जो गाड़ी का ड्राइवर होता था उसको अच्छा चलो सीधा किचन में चलो, फिर किचन में आते थे फिर वो हमारा दूध वाले भाई है ना जगदीश भाई, उनके पास कुल्फी होती थी, फिर कुल्फी खाती थी दादी उधर, फिर उधर जाती थी। तो बागवन ने अच्छा कहाँ गए थे, अरे थोड़ा सा मैं मीठा खाने का दिल किया तो चली गई थी उधर। ऐसे सच्चाई सब ऐसे दादी बहुत सबको हंसाती थी खिलाती थी और प्यार भी बहुत करती थी।
सुभाष भाई आप इतने वर्षों में आपने क्या राष्ट्रपति से लेकर आपने नीचे तक मन हर वर्ग की आत्माएं ज्ञान सरोवर आई, दादियों के संपर्क में आई, भारत की बड़ी से बड़ी हस्ती चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे मैं जानता हूं सिंधी सम्मेलन हुए थे तो हिंदुजा आदि फैमिली अपना हेलीकॉप्टर लेके आए थे, माना इतने सारे वीआईपी इतनी सब, तो एक दादियों का प्रभाव क्या उन पर पड़ता था, क्योंकि आप भी हर एक से जुड़े, हमने देखा आप डाइनिंग में आप हर एक को भोजन के निमित्त तो आप हर एक से जुड़े होते थे। मुझे याद है कि विंग्स के प्रोग्राम होते थे, हर प्रकार के वर्ग के लोग आते थे, 600-700 मेहमान होते थे, चाहे डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो, बिजनेसमैन की कॉन्फ्रेंस हो, राजनीति सेवा वाले हो, तो हम जब हरेक से पूछते थे इन 4 दिनों में आपने क्या पाया, तो वो कहते थे कि 4 दिनों में उन्होंने सबका सुना होगा, उषा बहन जी, शिलू बहन जी आदि सभी के, सारे स्पीकर्स के, लेकिन वो अनुभव ये सुनाते थे कि दादी जो स्टेज पे 10 मिनट मिली ना, दादी जो आई वो पीछे कोने माला भी, वो कहता था कि जो दादी से जो प्यार की और जो शक्ति की जो शांति की अनुभूति हुई वो उन पे ज्यादा इफेक्ट करती थी दादियों की जो पाल। तो ऐसे कुछ खास व्यक्तियों के कुछ अनुभव जो दादी से प्रभावित होके गए।
अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, एक बार वो रामदेव बाबा आए थे इधर, रामदेव बाबा आए थे तो दादी क्या वो जब सुनते हैं ना ऐसे वो अपना लगाते हैं सुनने का, फिर वो कुछ रामदेव बाबा एक दो बातें सुना फिर दादी ने निकाल दिया ऐसे, बोला चुप कर अभी मैं सुनाती हूँ ना तेरे को अभी एकदम वो एकदम इधर नीचे जाके बैठ गया, जी दादी जी, जी। और मैंने देखा कि उसका वो कुछ बड़ा अभियान शुरू करने वाले थे और वो करके, तो उसकी क्या इच्छा थी कि मेरे को ऐसा हाथ रखे दादी, मेरे सिर पे हाथ रखे, तो दादी मिली जुली क्या ओ हाथ तो रखा ही नहीं, तो अभी जा रहे थे वो कार में बैठे, कार में उनका बुलेट प्रूफ कार थे, तो क्या हुआ दादी जी फिर उसको बाइक करने के लिए आई, अब वो बुलेट प्रूफ कार है ना तो कांच खुलती नहीं, उसके दरवाजा ही खोलना पड़ता, तो फिर उसने क्या दरवाजा ऐसा खोल के बाहर आया, तो दादी ने बोला मुठता तू मानेगा नहीं, ऐसा जोर से मारा, ओ इतना खुश होगा अब भी मेरा अभियान सफल हो गया, क्योंकि वो बाहर के तो लोग वही चाहते ना कि भाई हमारे ऊपर दादी का आशीर्वाद सिर पे हाथ रखे, तो ऐसे दादी ने जोर से कहा मुठ्ठा मानेगा नहीं तुम ऐसे करके तो बहुत खुश हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, और वैसे देखा जाए तो मैं एक बहुत छोटे से गाँव से निकला हूँ, जब मैं वहां था तो हमारे गाँव में लाइट भी नहीं थी, 1981 की बात है, तो आए इधर आए थे, अब यहाँ धीरे धीरे पांडव में थे तो हम नॉर्मल थे मतलब हमारे, लेकिन जैसे हम ज्ञान सरोवर में आए तो ये कॉन्फ्रेंस ये वो धीरे धीरे यही सब कुछ जो है यही सीख गए। तो फिर आपको बताया जैसे कि जैसे अब्दुल कलाम जब भारत रत्न थे वो आए थे, तो इन लोगों थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आया कि इनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए क्या। तो उनकी एक बात सुना था, सुबह इडली सांभर बना था तो फिर सुबह खाया तो मुझे थोड़ा सा क्लिक हो गया कि ये दोपहर को मांग सकते करके। तो मैंने थोड़ा 5-6 इडली और थोड़ा सा चटनी फ्रिज में रखा था, तो वो जब भोजन पे आए तो वो ऐसे नॉर्मल इडली है क्या ऐसा पूछा, तो हमारे जो खिलाने वाले 2-4 बहन थी घबरा गई, अरे इडली मांग रहा, इडली मांग रहे कर। मैंने कोई बात नहीं, 2 मिनट को मैं फटाफट माइक्रोवेव में इडली गर्म करके दे दिया, तो इतना खुश हो गया। और बाकी खिलाने वाले, मैंने घबराना थोड़ी होता है, बाबा सब कर देता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये भी चीजें मतलब बाबा सिखाता है। तो मैंने देखा कि हम तो कुछ पढ़े मतलब इतना सीखे भी नहीं, कोई कोर्स भी नहीं किया। लोग बोलते कौन सा कोर्स किया, हमें कोई कोर्स बस कुछ नहीं, लेकिन दादियों के संग में रहते रहते सब सीखे। तो जैसे मैं जो भी दादियां, क्योंकि हमारे पास आती थी खाने के लिए, जानकी दादी का बहुत लाभ मिला, क्योंकि जानकी दादी जब विदेशी होते तो यहां आते थे। तो जानकी दादी की एक बात मैं सुनाता हूँ कि जानकी दादी जब भोजन पे आई तो उन्होंने कहा, मैं क्या होता था कि भोजन करके, क्योंकि सुबह से उनके ब्राह्मणिया भी जैसे प्रवीणा बहन है, हंसा बहन है, बिजी रहते थे, तो दादी कहती आप चले जाओ, आप आराम करो, ये सुभाष मुझे छोड़ देगा कॉटेज, तो चले जाते थे। क्योंकि दादी क्या करती है, लास्ट में अनार खाती थी, अनार होता ना, तो उसको थोड़ा टाइम चबाने में थोड़ा टाइम लगता था, तो वो चले जाते थे। फिर मैं दादी को छोड़ने के लिए वहां जाते थे। तो उस समय दादी जी एक बात बहुत अच्छी सुनाई थी, मैं सुनता आशा दीदी के मम्मी पापा ऐसे थे, कानपुर में बाबा गए थे, तो जब वहां गए तो बाबा ने पूछा वो बच्ची नजर नहीं आ रही, मतलब आशा बहन की मम्मी। तो उनके पिता ने बोला, आशा बहन के पिता ने, कि नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं वैसे। तो बोला कोई बात नहीं, बाबा जाएगा मिलने माता को। तो जाते जाते बाबा ने थोड़े अंगूर लिए और गए मिले, और एक एक अंगूर वो खिला रहा था माता जी को, बाबा साकार बाबा ब्रह्मा बाबा। जब बाबा खिला रहे थे तो 4-5 अंगूर खाने के बाद जो मुंह में रह जाता है ना कचरा जैसे, तो वो माता जी इधर उधर ऐसी देख रहे थे कि उसको मैं किसी में डाल। तो इतने में बाबा ने कहा, बा बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा ऐसे। अब तो बाबा ने समझ गया, बाबा ने कहा तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट सामने बैठा है और तुम चिंता क्या। और बाबा ने अपना हाथ ऐसे किया, ये जो है ना ऐसे, बोला इसमें थूक ले, तेरा बाप है ये ऐसे। वो थोड़ा शर्माए फिर निकाला, लेकिन मतलब कि ब्रह्मा बाबा मतलब कितना बच्चों को प्यार देता था, कितना स्नेह देता था, इसी से हमें समझ में आता है। तो ऐसे हम जैसे गुलजार दादी की एक बात सुनाता हूँ, गुलजार दादी के पास मैं और हमारे आनंद भाई हम गए थे शांतिवन, क्या का समाचार सुनाया विंग का ये वो। तो गुलजार दादी के रूम में बैठते थे हम, तो छोटे हैं तो बैठे थे रूम में। तो गुलजार दादी ने, अच्छा आप बैठना हम आते हैं, मैं आती हूँ। हम सोचा चलो ठीक है। तो दादी गई और वापिस आई तो दादी के हाथ में क्या था पता है, 2 प्लेट, उसमें नमकीन मीठा ये वो ऐसा करके, जैसे नहीं हम सर्व करते, जैसे हमने देखा दादी ये क्या कर रहे ऐसे। तो दादी बोलते, अच्छा मैं ज्ञान सरोवर में आते तो कितना खातिर करते हो, मैं भी करूंगी। तो देखो कितनी बड़ी महान दादी, मैंने कहा आपको देखने के लिए लोग तरसते और आप हमारे लिए इसी। तो ऐसी ऐसी दादी के अंदर एक एक दादी सचमुच रत्न है, महान है, श्रेष्ठ है। और उन्होंने तो स्वयं भगवान ने उनको तैयार किया, और उन्होंने भगवान ने तैयार किया, और जो तैयार किया उन्होंने हमें तैयार किया है। तो हम तो वाया वाया आए हुए, लेकिन दादियां तो डायरेक्ट पालना लेने वाली महान हस्तियां थी।
बहुत सुंदर। हाँ, जैसे सुभाष भाई इतनी पालना दादियों की जो आपने ली, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसे पेपर आए होंगे जिनमें दादियों की पालना, शिक्षा, वो शक्ति आपको काम की होगी, तो ऐसा कोई अनुभव आपके अपने जीवन का?
शायद आप लोगों ने वो अनुभव पढ़ा होगा या सुना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई हम इधर आए तो हमें कोई एग्जाम नहीं आता है, हमें कोई पेपर नहीं आता है, हाँ ऐसी भी बात नहीं। पेपर सबको आते हैं, हमें ज्ञान का यूज करना होता है, ज्ञान का उसमें कैसे हम यूज करेंगे तभी तो सफल होंगे ना। ऐसे थोड़ी ज्ञान बहुत है और गुस्सा आ रहा है, कुछ ये आ रहा है, ऐसा तो जो कुछ ज्ञान है हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते। मुझे आता है 2007 दिसंबर की बात है, रामदेव बाबा आए थे यहाँ नीचे मेडिटेशन हॉल में, जानकी दादी ने उनको ऐसे नीचे बैठे थे ऐसे और योग करा है, फिर रामदेव बाबा, अरे रामदेव बाबा हो और योगा नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो स्टेज पे आके हमको 15 मिनट सभी ज्ञान स्वरूप वालों को सभी को बोला कि ये 4-5 ये है प्राणायाम है आसन है, ये करना बहुत अच्छा रहेगा। हमने भी शुरू किया, कई लोगों ने शुरू किया, मैं कंटिन्यू 2 मास वो प्राणायाम किए। 2 मास के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पेट में कुछ है करके, ऐसे नाभि के बाजू में गांठ है ऐसा लगा, हो सकता है बड़ी गांठ होगी लेकिन प्राणायाम के कारण छोटी हो गई तो हाथ में लगी। तो डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि बॉम्बे चलो, बॉम्बे गए तो अशोक मेहता जी डॉक्टर ने उनका निरीक्षण किया, बायोप्सी किया, तो क्या निकला, कैंसर।
ये रिपोर्ट आई थी तो वो पॉजिटिव थी ना?
हाँ तो अब क्या हुआ, जब वो रिपोर्ट आई तो उन्होंने वो बताया कि भाई आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव तो होनी चाहिए, हमको पता ही नहीं था निगेटिव पॉजिटिव क्या है। तो हमको बाबा के घर में बैठे तो हमारे साथ वाला जो भाई था, अरे पॉजिटिव माना आपको कैंसर है, मैं पॉजिटिव माना, मैंने बहुत अच्छी बात है ऐसा सोचा मैंने। तो बाद में तो क्योंकि बाबा के घर में हमें तो सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला गया कि मैं लिफ्ट से जा रहा था, ऐसे 7th फ्लोर पे हमारा रूम था नीचे हमारा जो बॉम्बे का हॉस्पिटल, बाबा के साथ मैंने बात किया, मैंने कहा बाबा ये शरीर आपका है, मैं भी आपका है, अच्छा जो कुछ करना है आपको करना है, मुझे तो कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊं तो मैं बहुत खुश हूं आपके साथ आने के लिए, अगर मैं यहां रहूं तो आप मुझे अच्छी ढंग से रखना ताकि मैं सेवा कर सकूं, मेरे दोनों में मुझे फायदा ही फायदा है, चाहे आपके साथ चलो चाहे यहां रहो। और बस मैं रिलैक्स हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो ट्रीटमेंट आदि शुरू हो गया, ये हो गया। तो मैंने पहला थॉट्स किया कि ये हम इतने सालों से इतना मेडिटेशन किया, तपस्या किया, जो कुछ है, अब ये पेपर का समय है, लेकिन इस पेपर से हमें फायदा लेना है, उससे हमें पॉजिटिव में कुछ ऐसा करना है जो हमें कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या हुआ, हमने जस शुरुआत हुई केमो ये वो, पहला संकल्प किया कि मैं परिवार को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा
भी नहीं पता था, यहां भी नहीं पता,
किसी को भी नहीं बताया, डॉक्टर को पता था, मुझे पता था, और हमारे साथ जो भाई था उसको, तीनों को ही पता था, और उनको बोला कि किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो करीब करीब 3 केमोथेरेपी हो गई, किसी को, हम बॉम्बे में थे तो इधर बोले कहां गया आप मीटिंग ये एनसीओ की, अरे वो सुभाष भाई कहां गए, ये प्रोग्राम करना है ये करना है। तो जब हम आए तो सबको थोड़ा पता चल गया, परिवार वालों को करीब करीब 4 केमो के बाद पता चला, तो जैसे उनके फोन आने लगे रोना शुरू। मैंने कहा क्यों रो रहे, नहीं आप बीमार है, मतलब किसने बोला बीमार है, वो थोड़ा सा था वो ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया। जैसे उनको पता चलेगा कि हमारी बात हुई है ठीक हो गए, तो वो सबको बताने लगे, नहीं नहीं वो एकदम ठीक है, हमने बात किया ना, हमको उन्होंने चुटकुले सुनाया, हमको हंसाया, तो वातावरण में क्या गया, पॉजिटिव मैसेज गया। और वो मैसेज के कारण उसका जो रिप्लाई आता है उससे हमारे हेल्थ में बहुत ही फायदा होता है और बहुत ही इम्प्रूवमेंट होती है, वो मैंने अनुभव किया। दूसरा काम हमने किया कि मुझे जो कुछ करना है डॉक्टर को करना है, मुझे थोड़े मैं तो फ्री हो गया ना, तो पहला काम किया मैंने कि जगदीश भाई की जितने भी लिटरेचर उसको मुझे पढ़ना है, तो रोज वो पढ़ना शुरू किया। अविक्तवाणी एक लैपटॉप लिया, उसमें अविक्तवाणियां जो वीडियो क्या वो देखना शुरू किया, कभी कभी रामायण ये भी देखते थे। तो सुबह से शाम मेरा एकदम शेड्यूल एकदम टाइट हो गया, एकदम मस्त। और एक अभ्यास मैं करता था, जब कीमो होता था ना बहुत शरीर में दर्द होता था, तो मैं एक अभ्यास करता था, हमारे जगदीश भाई जी ने सिखाया था कि ड्रिल कैसे करे, तो पता था लेकिन किया कभी नहीं था। तो मुझे उस समय मुझे टाइम मिल गया, तो मैं यहां से धीरे 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 परम धाम जाना, परम धाम से धीरे धीरे नीचे आना, यहां से परम धाम जाना, ऐसे मैं हजारों बार ऐसा अभ्यास करता था। इतना डीप साइलेंस में जाता था जब मैं, और लेटा लेटे ही करता था, खड़ा बैठ भी नहीं सकते थे तो लेटे लेटे करता था। तो कभी मेरा भाई साथ में होता था, मैं ऐसा हिलाता था, ये जिंदा भी है या चला गया करके, इतना डीप साइलेंस चला जाता था। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा चांस मिला। फिर मैंने कुछ लिखना शुरू किया, छोटे छोटे अनुभव क्या क्या क्या, कुछ फ्री थे ना काम, तो वो लिखना शुरू किया। फिर जब मैं पूरा ये कारोबार पूरा हो गया, रिपोर्ट भी सही आया, निगेटिव रिपोर्ट आ गया तो फिर मैं आया। तो क्या हुआ, एक दिन मैं इसे शिवानी बहन आए थे, तो उनको सुना रहा था, अनुभव सुना रहा, इसे इसे ये इसे। तो शिवानी ने मुझे नहीं सुना, बोले अच्छा मैंने इसको लिखो लिखो और स्टेप बाय स्टेप लिखो और ज्ञानावृत में ले दो। ये मैंने कहा, मुझे हंसी आने रही, ये क्या ज्ञानावृत देने जैसा है क्या अंदर अंदर। तो मैं टेढ़ा मेढ़ा कुछ लिख के थोड़ा 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 फिर मैंने गोविंद भाई को दिया। मैंने गोविंद भाई इसको थोड़ा श्रृंगार करो, क्योंकि श्रृंगार करने का आदत है ना इनके। तो आर्टिकल को अच्छे बना दिया, ज्ञानामृत में भेजा, जैसे वहां भेजा उन्होंने उसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश कर दिया। जैसे वो बाहर आ गया मैगजीन, तो मराठी गुजराती सारी भाषा में दड़ 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 सबको पता चला। अभी किसी को पता नहीं था वो किसके कारण, सबको पता, और सब लोग मिलने आने लगे, कहाँ गए कहाँ है करके, अरे मैं ठीक हूं ना यार कुछ नहीं। तो लेकिन ये प्यार तो था सबका, तो ये वो सेवा हो गई। तो दूसरा फिर पीस ऑफ माइंड वाले बोले आपको इंटरव्यू लेना, तो उन्होंने 13 एपिसोड किए उसके, कैसे क्या हुआ ये हुआ वो हो गया। फिर बहुत सारे चैनल ई टीवी में आदि बहुत जगह पे आया, लेकिन मैंने एक अनुभव किया वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको सुनाता हूं कि बाबा कैसे मदद करता है। बाबा तो है ये बच्चा उनका, तो बाबा तो मदद। मैं कमरे में बैठा था, हमारी माँ भी है वो 95 ईयर की, वो भी आती मसाज करती थी मेरी, मना करने के बाद भी करती थी, क्योंकि वो नशे है ना, कोई शरीर को हाथ नहीं लगावे ऐसा ऐसा। तो एक दिन मैं कमरे में बैठा था और उसी दिन बाबा का प्रोग्राम था शांतिवन में, शांतिवन डायमंड हॉल में। तो जो FM रेडियो में गीत आ रहे सुन रहे चल रहे चल रहे, तो जस बाबा अभी अवतरित हो गए और दृष्टि दे रहे थे, और हमारे कमरे में ट्रांसलेट का पिक्चर है। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा 25,000 लोगों को आप मुरली सुनाओगे और मैं यहां अकेला बैठा हूं ऐसे, और मेरे दोनों आंखों से ऐसे पानी आने लगा एकदम भावुक होके। तो इतने में क्या होता है, वो ट्रांसलेट से धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा है ना मेरे तरफ धीरे धीरे आते और मेरे बाजू में ऐसे बैठ जाते, बैठ के जो मुरली हुबेहू मुरली मेरे को बाबा सुना रहे बैठ के, और मैं तो इतना खुश, इतनी शक्ति मेरे अंदर, इतनी शक्ति आ गई। 1.25 घंटा की मुरली पूरी और मैं एकदम खड़ा हो गया, खड़ा होके डाइनिंग में आ गया। सब तो सब लोग मेरे को देख रहे ऐसे ताक रहे, क्या हुआ इसको, अरे तुम्हारे तबीयत ठीक नहीं, इधर क्यों घूम रहा है, ऐसे ऐसे सब बोल रहे। अब मैं किसको बताऊं भाई, बाबा ने मुझे मुरली सुनाई, बाबा ने मुझे। तो वो जे मेरे जीवन का बहुत बड़ा मतलब अनुभव कि भगवान स्वयं आके मुझे जैसे डायरेक्ट कि कैसे बाबा अपने बच्चों का दिल कैसे पूरा करता है। बाबा अपने जैसे भक्ति मार्ग में सुनते थे कि भाई वो कृष्ण भी आता है मदद करता है, भगवान भी आता है मदद, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर हम सच्चे दिल से बाबा को पुकारते तो बाबा कैसे आके मदद करता है। तो जब हम देखा कि जब कभी कभी संकल्प हमारे पास सारे देश विदेश के लोग आते हैं, मिलते रहते हैं, ऐसे हमारे पास कब आओगे, हाँ क्यों नहीं जरूर आएंगे, यही करते। तो जब हम ये कैंसर का पूरा हो गया तो हम फिर विदेश जाना शुरू, मतलब कहीं मिला सिंगापुर मलेशिया, फिर जानकी दादी के पास गए थे मैं और महावीर भाई। तो दादी को बोला, दादी आपने सारे विषयों में कितनी सेवा की है, ऐसे जहां जहां आपके जहां कदम पड़े ना, कहां कहां कदम पड़े वहां हम देखना चाहते। तो दादी को तो समझ में नहीं, तो वो हंसा भाई ने बोला, दादी वो आप जो लंदन में सारे यूके में जो सेवा किया वहां घूमना चाहते। अच्छा, ऐसे करते ऐसे दादी ने फिर हमारा प्रोग्राम बनाया। उसके बाद 2017 में फिर हम पूरा अमेरिका गए, लेकिन जिधर भी गए जैसे कुछ ज्ञान सुनाना शुरू करो ना तो उतने बोल तो कोई ना कोई खड़ा होता है, नहीं 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 आपका जो कैंसर वाला अनुभव है ना वही सुनाओ हमको, बस हमको तो कोई प्रैक्टिस करनी कुछ नहीं, जो है वो सुना देना। तो जब हम कनाडा में गए वैंकूवर में, तो जब अनुभव सुनाया तो एक माता जी खड़ी हुई रोते रोते बोलती, पता है आपको किसने बुलाया? मैंने किसने बुलाया? बोलती कि मैंने आपको बुलाया। मैंने कहा आपका तो परिचय नहीं मेरा। नहीं, बोला मैं आपको पीस ऑफ माइंड में सुना था और जब से सुना है तब से मैं अमृत वेला रोज बाबा को बोलती, ये भाई से मुझे मिलना है, ये भाई से, देखो भाई ने बाबा ने आपको यहाँ बुलाया। तो ये बाबा की कमाल है,
वंडरफुल। अब दिल तो करता है, अभी सुनते रहे, अभी भाई साहब भी आ गए राम नाम। तो ये सब हम आप, मैं तो समझता हूँ बाबा से दादियों से आप बहुत पुण्य आत्मा आपने पाया ही पाया है, और हम सबको भी ये अनुभव जीवन में काम आएंगे ना, हर एक को कोई ना कोई परिस्थिति में ये अनुभव हर एक को शक्ति देगा और बाबा के बहुत समीप लाएगा कि बाबा है और हर पल हमें देख रहा है और मदद कर रहा है।
देखो ये भी एक बाबा की कमाल है कि जैसे आज ये प्रोग्राम नहीं था लेकिन गोविंद भाई के दिल में था कि हमारी दो दो डायरेक्टर है, जैसे चंद्रमणि दादी है, मनोहर दादी है, उनके बारे में कोई इतना कोई बताते नहीं है। तो आज अपन ये करते, मैंने कहा आप साथ में आओगे तो हम बोलेंगे, साथ करेंगे। तो ये हुआ। और दूसरी बात है कि हमने जस्ट अभी एक 100 आर्टिकल प्रकाशमणि दादी के लिखे, 100 आर्टिकल, शायद आप सबकी शुभ भावना हो तो उसका किताब भी बन जाएगा, हमने तैयारी पूरी कर दी है। तो दादी के जैसे छोटे छोटे किस्से है ना, ऐसे दादी प्रकाशमणि दादी के साथ हमने 100 लिखे, क्योंकि दादी हमारे साथ भोजन करने आती है, दादी के पास छोटी छोटी बातें, उससे कोई एक मैसेज निकलता है।
बिल्कुल।
फिर ऐसे हमने गुलजार दादी के 50 लिखे, ऐसे हमने जानकी दादी के 50 लिखे, फिर हमारी जो जगदीश भाई साहब है उनके मैंने 25, मम्मा के कुछ लिखे, मम्मा को तो हमने नहीं देखा लेकिन कुछ लोगों ने जैसे अनुभव में सुनाते उसमें से निकाल के। लेकिन ये जो प्रकाशमणि दादी जी, मनमोहिनी दीदी और हमारे जानकी दादी, गुलजार दादी, इनके तो साथ में हमें मिलने का, बात करने का या कुछ अनुभव, वो जो प्रैक्टिकल रूप में है वो हमने ये लिखे है। तो वैसे तो व्हाट्सएप और उसमें तो मैंने डाले हुए है, फेसबुक में भी डाले हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपके पास भी आ जाएंगे,
डिजाइन करके प्रिंट कराएंगे, चिंता मत कीजिए।
तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान से सुन रहे हैं।
भाई के लिए सदा स्वस्थ रहें, सदा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कायम रहे।
हम तो छोटी सी सेवा करने, भोजन खिलाने की सेवा करते करते, हमारी कल संतोष दीदी आएगी, उन्होंने हमको पानी बांटने की सेवा की दी थी शुरू, पानी बांटते बांटते अभी तक पानी ही बांट रहे सबको।
थैंक यू सो मच सुभाष भाई, थैंक यू।
एक कमेंट करने वाले
देख कर जगवाले पर कर जगवाले पर यकीन नहीं।